समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, आज सवेरे के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत खास स्वागत है आपका। आज के दिन को खास बनाने के लिए और आपके एक बेहतर दिन की शुरुआत के लिए स्टूडियो में आज रम्या के साथ मैं हूं नवीन सक्सेना। नमस्कार रम्या।
नमस्कार नवीन, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। द टेम्परेचर्स हैव स्टार्टेड टू राइज इन दिस सीजन, टू जेनरसली अप्लाई सनस्क्रीन इज बैक, and hence sit back, have something tall and cool to drink and join us in our forever exciting daily news magazine program aaj savere।
तो रम्या की इस एडवाइस के साथ हम शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम कि दिन भर आपको कैसे अपने आप को स्वस्थ बना के रखना है। और रम्या, जब स्वास्थ्य की बात होती है तो जानती हैं कि कितनी ही चिकित्सा पद्धति हैं इस पूरे विश्व में जो इंसान को ठीक ठाक रखने में और उसका स्वास्थ्य को संपूर्ण रखने में लगातार हमारा साथ दे रही हैं, और उन्हीं में से एक है होम्योपैथी।
Yes.
और आज हम इसका जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आज विश्व होम्योपैथी दिवस है, और पहला विश्व होम्योपैथी दिवस आज के दिन 2005 में मनाया गया था। क्यों मनाया गया था, किस लिए मनाया गया था, यह हम अपने इतिहास की जब बात करेंगे तब आपको बताएंगे। बहरहाल, ये सब जानने के लिए आपको अगले आधे घंटे तक मेरे यानी नवीन और रम्या के साथ बने रहना है। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की खास खबरों पर कि क्या कुछ हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के द्वारिका में यशोभूमि सम्मेलन केंद्र में विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर दो दिवसीय होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगी। संगोष्ठी का आयोजन आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद कर रही है, और इसकी मुख्य विषय वस्तु अनुसंधान को प्रोत्साहन देना और दक्षता को बढ़ाना है। इस आयोजन का उद्देश्य समग्र स्वास्थ्य और आरोग्य तथा होम्योपैथी शोध में अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहन देना है।
In Assam, 40 lakh women will take pledge today across the state to ensure more voting in the Lok Sabha polls. Participating in an Akashvani talk show tonight, senior officials of the Chief Electoral Office informed that women folks would help them to promote ethical voting. Our correspondent reports that cash, liquor and other goods amounting to 127 crore rupees have been seized so far in the state. The officials further said that flying squad and static surveillance teams have been deployed across the state to prevent movement of unauthorized items. They added that all basic facilities including ramp, drinking water are to be provided to voters on the day of voting, and some of the polling booths are to be exclusively managed by the Divyang officials.
पूरे देश में चुनावी माहौल है, चुनावी उत्सव है, और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के वेल्लोर में जनसभा को संबोधित करेंगे। श्री मोदी धर्मपुरी से गठबंधन की सहयोगी पीएमके पार्टी के उम्मीदवार सौमैया अंबुमणि के समर्थन में प्रचार करेंगे। वो एक और सहयोगी दल के नेता एसी षणमुगम के समर्थन में भी प्रचार करेंगे जो भाजपा के चुनाव चिन्ह पर वेल्लोर से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री कोयम्बटूर के निकट मेटुपलयम भी जाएंगे। वो नीलगिरी से भाजपा उम्मीदवार डॉ एल मुरुगन, कोयम्बटूर से के अन्नबलई और पोलाची से के वसंतराजन के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को राज्य की सभी 39 सीटों के लिए मतदान होगा।
The European Union and India has launched an Expression of Interest (EOI) to promote startup collaboration on recycling of e-vehicles batteries under the Trade and Technology Council. The collaboration aims to enhance the cooperation between European and Indian small and medium-sized enterprises and startups in the clean and green technology sector. The intended exchange of knowledge and expertise will be instrumental in advancing the circularity of rare materials and transitioning towards carbon neutrality in both India and the EU. The Office of Principal Scientific Advisor to the Central Government said that under the EOI, 12 innovators, 6 each from India and the EU will be selected and get a pitching opportunity during the event scheduled for June 2024. It added that the event is also a part of a broader effort to promote a sustainable agenda, foster innovation, and forge stronger economic relations between the European Union and India.
चुनावों से जुड़ी कुछ और खबरों पर बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में गया के कुरारू में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वो आज दोपहर बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे, जो औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी की केंद्रीय समिति के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने महागठबंधन दलों के बीच सीट बंटवारे के समझौते के तहत राजमहल सीट के लिए विजय हसंदा और सिंहभूम सीट के लिए जोभा मांझी के नाम की घोषणा की है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में सिद्धिपीठ के जिला कलेक्टर मनु चौधरी ने मेदक लोकसभा सीट पर बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार पी वेंकटरामा रेड्डी द्वारा आयोजित बैठक में भाग लेने वाले राज्य सरकार के 106 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें स्थायी और अनुबंधित दोनों प्रकार के कर्मचारी शामिल हैं। ये कर्मचारी ग्रामीण गरीबी उन्मूलन संस्था और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कार्यरत थे।
In Chhattisgarh, 12 people, including 3 women, were killed and 15 injured in a bus accident late last evening. The condition of 10 injured persons is reported to be critical. The accident occurred when employees of a private company located in Kumhari area of Durg district were returning to their home in a bus. According to police officials, the driver of the bus lost control over the vehicle, which fell into a mine near Khapri village. Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Deo Sai expressed grief over the tragic incident and instructed the officers to provide best medical care to the injured. Durg collector has ordered a magisterial inquiry into this incident.
रम्या, पूरे देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, चुनावी माहौल है और चुनावी उत्सव भी है, लेकिन इसको लेकर भी बहुत सारे भ्रामक सूचनाएं जो हैं वो कही जा रही हैं, लेकिन आपको उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ आकाशवाणी पर ध्यान देना है, क्योंकि हम सीधी सही और सच्ची बात बताते हैं। अब एनटीए ने भी स्पष्ट किया है कि जो छात्र चुनाव में वोट डालते हैं वो अपनी उंगलियों पर स्याही लगवाते हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें परीक्षा में आने से रोका जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्यों सरोपिया?
Yes, absolutely. The NTA has said that it has not issued any such guidelines and instructions, and it has asked students to not pay attention to any such rumours and exercise their voting right. It has also advised candidates to focus on their studies and prepare for the forthcoming examination.
हम एक बार फिर आपको यहाँ से क्लियर कर देते हैं कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो छात्र आम चुनाव में वोट डालते हैं और अपनी उंगलियों पर स्याही लगवाते हैं, उन्हें परीक्षा कक्ष में आने से नहीं रोका जाएगा। एजेंसी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर इस संबंध में एक मैसेज चल रहा है जो पूरी तरह से निराधार है, जिसमें कहा जा रहा है कि ऐसे छात्रों को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है, इस पर ध्यान नहीं दें। और अब बात करते हैं खेलों की दुनिया की।
यस, इन मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस वर्ल्ड नंबर 1 इंडियाज रोहन बोपन्ना एंड हिज ऑस्ट्रेलियन कंपेनियन मैथ्यू एबडन will face Mate Pavic of Croatia and Marcelo Arevalo of El Salvador in the men's doubles pre-quarters today. The match is scheduled to begin at 5:10 p.m. Indian Standard Time. While in men's singles, another Indian player, Sumit Nagal, will face Holger Rune of Denmark tomorrow in the round of 32. Earlier on Sunday, Nagal became the first Indian to enter the Monte Carlo Masters singles main draw in 42 years. Following the footsteps of the legendary Ramesh Krishnan, who made it to the main draw of the same tournament in 1982.
टेनिस के कोर्ट के बाद अब आपको लिए चलते हैं हम आईपीएल यानी क्रिकेट के मैदान पर। कल रात चंडीगढ़ में महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद ने एक रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स को 2 रन से हरा दिया। आज जयपुर के सवाईमान सिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा और मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। तो ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। और अब आपको बताते हैं कि आपके महानगरों का क्या हाल है। चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद रम्या के साथ, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता मेरे साथ।
Sure, Naveen. Coming to Chennai, Lieutenant General Upendra Dwivedi, the Vice Chief of the Army Staff, visited the headquarters of the Dakshin Bharat area of Indian Army at Chennai yesterday. The Vice Chief was briefed by General Commanding Officer Lieutenant General K.S. Brar on the initiatives taken and challenges faced by the military area. He was also briefed about the transformational initiatives undertaken by the headquarters. The Vice Chief appreciated the initiatives and stressed on digitization and innovative startup initiatives to be embraced to bring about quantum leap in the Indian Army of the future. More news from Chennai. Dr. J. Radhakrishnan, the Commissioner of Chennai City Corporation, has announced that the state-owned liquor stores will be closed on June 4th and from midnight on June 17th to 19th. The Civic Commissioner stated in a press release that hotels and bars and clubs are also closed on those days. Prior to this, on Tuesday, all additional DEOs, general observers and police officers were randomly assigned to the Ripon building under the direction of the Commissioner. Coming to Bengaluru, the senior officers in Udupi District Administration donned the costumes of Yakshagana artists to spread the message of electoral participation in Karnataka. Zilla Panchayat CEO Pratik Bayal, Kundapur Assistant Commissioner Rashmi, Udupi Additional Deputy Commissioner Mamta Devi GS and Coastal Security Superintendent of Police Mithun HN wore the costumes and grease paint to perform and create awareness about the voters' electoral participation. They appealed to the voters to turn up on the voting day and cast their vote. They received basic training on the postures of Yakshagana artists, after which their performance was videographed and the same is being used to create awareness. Yakshagana is a traditional theatre that combines dance, music, dialogue, colourful costumes, makeup, masks and stage techniques to narrate stories from Hindu epics of Ramayana and Mahabharata. Finally, coming to Hyderabad. In Telangana, Siddipet District Collector Manu Chaudhary has suspended 106 Telangana government employees, including contract and permanent employees, for attending a meeting hosted by BRS's Medak Lok Sabha candidate P. Venkatarama Reddy 2 days ago. The state government employees were working for the Society for the Elimination of Rural Poverty and the National Rural Employment Guarantee Scheme, both wings of the District Rural Development Agency. Of the 106 employees, 36 work with the SERP and 68 with NREGS consults, among others. BJP candidate for Medak Lok Sabha constituency M. Raghunandan Rao filed a complaint with the returning officer over the violation of the model code of conduct, and following which an election flying squad was sent to the venue. That was all from the metro cities in the south, and now for the metro cities in the north, it's over to you, Naveen.
सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली की. राम्या, दिल्ली पुलिस का एक कार्यक्रम है मिलाप, जिसके तहत परिवार से बिछड़े हुए बच्चों को उनके अभिभावकों से मिलाया जाता है. और इसी ऑपरेशन मिलाप के तहत एक 4 वर्षीय बच्चे को कल उसके परिवार से मिलाया गया. राजधानी के नेपसराय क्षेत्र से लापता यह बच्चा पुलिस को लावारिस अवस्था में मिला. बच्चे को उसके परिवार से मिलवाने के लिए पुलिस विभाग ने पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत भी किया. दोस्तों, जानते हैं कि इंसान कितना लोभी हो सकता है कि उसने पक्षियों को भी नहीं छोड़ा. अब देखिए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मोर के पंखों की तस्करी करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है. जिन पंखों को हम अपने घर में रखते हैं ना सजावट के लिए, और वो पंख वो होते हैं जो मोर खुद ब खुद छोड़ देते हैं. अब जिन लोगों ने मोर के पंखों की तस्करी की होगी, कितने मोरों को उन्होंने हत्या की होगी, कितने मोरों को उन्होंने पकड़ा होगा. सीबीआई ने इनके पास से लगभग 125 किलोग्राम मोर के पंख बरामद किए. एक पंख का वजन जो होता है बहुत ग्राम्स में होता है, 125 किलोग्राम. आप सोच सकते हैं कि कितने पंख और कितने मोर रहे होंगे. सीबीआई को एक शिकायत मिली थी कि ये लोग मोर के पंखों की तस्करी के लिए बैंकॉक लेकर जा रहे थे. अगली खबर, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज होने पर कल भाजपा ने श्री केजरीवाल से इस्तीफा देने की मांग की है. वहीं राजधानी दिल्ली में 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पहले सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली में छठे चरण के तहत मतदान के लिए 29 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी। मतदान 25 मई को होगा और मतगणना 4 जून को संपन्न होगी। दिल्ली की वायु गुणवत्ता की बात करें तो उसमें हल्की गिरावट दर्ज की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वायु गुणवत्ता का जो स्तर था वो कल शाम 4 बजे तक लगभग 200 के आसपास था। बात ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियों की, यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए रेलवे ने दिल्ली समेत अन्य शहरों से यात्रा के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की है। एक प्रेस वक्तव्य में माध्यम से उत्तर रेलवे ने बताया कि इसके तहत राजधानी से आने जाने के लिए 3 रेलगाड़ियां चलेंगी, पुणे हजरत निजामुद्दीन पुणे सुपरफास्ट ट्रेन, पटना आनंद विहार टर्मिनल पटना सुपरफास्ट ट्रेन और गया आनंद विहार टर्मिनल गया दैनिक सुपरफास्ट ट्रेन। दिल्ली के बाद रुख मुंबई का। बृहन मुंबई नगर निगम के आयुक्त भूषण गगरानी ने कल बताया कि मीठी नदी सहित पूर्वी उपनगरों में विभिन्न नहरों के प्री मानसून कार्यों का निरीक्षण और समीक्षा उन्होंने की। उन्होंने सभी अधिकारियों को मानसून से पहले काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। वहीं महिलाओं में मतदान के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए कल नागपाड़ा क्षेत्र की अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं ने मतदान करने की शपथ ली। जिला निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्र क्षीरसागर स्वीप ये कार्यक्रम है जो कि मतदाता जागरूकता और सहभागिता कार्यक्रम है के विशेष समन्वयक अधिकारी डॉ सुभाष तलवी ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता गतिविधियां चलाई। स्वीप के तहत जागरूकता अभियान का उद्देश्य अल्पसंख्यक महिलाओं में मतदान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ाना है। रुख करते हैं कोलकाता का तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने 6 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के भूपति नगर में अपनी टीम पर हुए हमले के संबंध में कल कोलकाता उच्च न्यायालय के समक्ष मामला दायर किया। सुनवाई आज होगी। दिसंबर 2022 में हुए बम विस्फोट के मामले की जांच के लिए एनआईए कर रही है और इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई थी। पिछले शनिवार को एनआईए पर स्थानीय लोगों ने उस वक्त हमला कर दिया था जब वो भूपति नगर में सर्चिंग के लिए गई थी। अब बात आपके शहर के मौसम की। शुरुआत करते हैं दिल्ली से। दिल्ली में तापमान 19 डिग्री और 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मुंबई मौसम साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 23 अधिकतम 33। कोलकाता यहां भी आसमान साफ रहेगा, तापमान 25 और 36 डिग्री सेल्सियस रहने की बात कह रहा है मौसम विभाग। बाकी हिस्सों का हाल रम्या
जी। चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई, द मिनिमम टेम्परेचर विल बी 27 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम अराउंड 36 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ मेनली क्लियर स्काई, द मिनिमम टेम्परेचर विल बी 21 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम अराउंड 35 डिग्रीज। एंड हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई, द टेम्परेचर विल हावर बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 25 डिग्रीज एंड अ मैक्सिमम ऑफ 37 डिग्रीज।
दिल्ली में आज तापमान 38 डिग्री छू सकता है और रम्या पहले ही आपको एडवाइस दे चुकी है एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम कि आपको आज क्या क्या करना है, एक बार फिर दोहराएंगी।
बिल्कुल, अप्लाई सनस्क्रीन जेनरसली टुवर्ड्स योर बॉडी बिकॉज यू आर वेरी प्रोन टू हैविंग सनबर्न्स एंड द रिस्क ऑफ स्किन कैंसर इंक्रीजेस विद द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड पेनिट्रेशन ऑफ यूवीबी एंड यूवीए रेज।
और इतनी सब बातों के साथ साथ अपने बैग में एक छोटी सी बॉटल पानी की भी जरूर रखिएगा।
हमेशा उसको रिफिल करते रहिए जहां जहां जाए, जितना हो सके प्लास्टिक की बॉटल्स को अवॉइड कीजिए। अपने पास एक थर्मस रखिए, हर जगह आपको अच्छा साफ पीने का पानी मिल सकता है, उसी को बार बार भरते रहिए और पीते रहिए, हाइड्रेटेड रहिए, अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाइए और
अगर
सीजनल फ्रूट्स हैं वो सब खाइए। बिल्कुल,
और इतनी सब बातों के बाद भी अगर आपने अपने बैग के अंदर वाटर बॉटल नहीं रखी दैट्स वेरी रॉन्ग, है ना। और अब बातें आज के इतिहास की। 10 अप्रैल है आज का दिन। उम्मीद करते हैं कि अब तक का ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा गुजरा होगा और जब भी आप अपने दैनिक घटनाओं में व्यस्त होते हैं तो आपको बता दें कि अतीत से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें याद करना बेहद बेहद जरूरी होता है।
एब्सोल्युटली। सो टुडे इज वर्ल्ड होम्योपैथी डे एंड इट इज सेलिब्रेटेड एनुअली टू ऑनर द वर्क ऑफ जर्मन फिजिशियन एंड केमिस्ट डॉ सैमुअल हैनेमैन ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी दैट इज 10th ऑफ अप्रैल। Homeopathy is an alternative medicinal practice which claims to treat diseases and disorders, applying the principle of curing like with like. This alternative medicinal practice has minimal side effects and trusts body's self-healing powers.
और अब बात उन घटनाओं की जो जुड़ी हैं आज के दिन से 1875 आज ही का दिन था जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी.
On this day in 1317, Saint Gora Kumhar, an intense devotee of the deity Vitthal at Pandharpur, took samadhi in Ter village in Osmanabad zila near Latur.
याद करेंगे आज हम रामचंद्र चटर्जी को जिन्होंने आज ही के दिन 1889 में गर्म गुब्बारे में उड़ान भरी थी और वो पहले भारतीय बने थे.
In 1982, Mahatma Gandhi Road Bridge at Patna was started by Indira Gandhi.
आज के दिन 1917 में महात्मा गांधी ने बिहार में 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी.
In 1982 again, Indian National Satellite INSAT-1A was launched, the first operational multi-purpose communication and meteorology satellite was procured from USA.
1988 आज का दिन जब जापान में सेंट्रल ब्रिज को यातायात के लिए खोला गया था.
In 1997, Kerala became the first state to have public telephones in all its villages, accessible over STD, ISD from any part of the world.
इतिहास में आज का दिन मशहूर है. वर्ष था 2007 जब अमेरिका के चार्ल्स सिबोनी अंतरिक्ष में पर्यटन के लिए पहुंचे थे.
In 1997, on this very day, Bill Gates, the chairman and CEO of Microsoft, announced 2.5 crore rupees aid to Bharatiya Vidya Bhavan's Gandhi Institute of Computer Education and Information Technology, Mumbai.
इतिहास की घटनाएं कुछ भीषण दुर्घटनाओं से भी भरी हुई हैं. 2016 आज का दिन जब केरल के कोल्लम जिले के पुत्तिलिंग मंदिर में भीषण आग से करीब 110 लोगों की मौत हो गई थी और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. तो ये थी वो घटनाएं जो जुड़ी हुई थी आज के दिन से. और अब बात करेंगे उन व्यक्तियों की जो जुड़े हैं आज के दिन से. तो सबसे पहले बात शास्त्रीय संगीतज्ञ, गजल गायिका और पद्मश्री से सम्मानित कलाकार शांति हीरानंद चावला की. आज उनकी पुण्यतिथि है. मल्लिकाए गजल बेगम अख्तर की रवायत को कायम रखने वाली सबसे मजबूत स्तंभ थी डॉ शांति हीरानंद. उन्होंने बेगम अख्तर की गायी ठुमरी, गजलें और दादरी को बहुत ही खूबसूरती से गाया है. आइए सुनते हैं उनकी आवाज में एक खूबसूरत गजल.
Today we are remembering Indian paleobotanist Birbal Sahani on his death anniversary. Born in Shahpur, Pakistan, in today's Pakistani Punjab, on 14 November 1891, he was the third child of Ishwar Devi and pioneer Indian meteorologist and scientist Lala Ruchita Ram Sahani, who lived in Lahore. He was the founder of the Paleobotanical Society, which established the Institute of Paleobotany on 10th September 1946. Which initially functioned in the botany department of Lucknow University.
आज ही ताकाजी शिवशंकरा पिल्ले की भी पुण्यतिथि है. ताकाजी शिवशंकरा पिल्ले जिनकी गिनती मलयालम के अग्रणी श्रेणी के लेखकों में की जाती है. ताकाजी शिवशंकरा पिल्ले द्वारा रचित उपन्यास चेबीन के लिए उन्हें सन 1957 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और फिर 1984 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया. आज ही पुण्यतिथि है विश्व के श्रेष्ठ चिंतक और महाकवि खलील जिब्रान की, जिन्होंने आज ही के दिन इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया था. वो विश्व के श्रेष्ठ चिंतक, महाकवि के रूप में ख्याति प्राप्त करने वाले महान दार्शनिक थे. देश विदेश का भ्रमण करने वाले खलील जिब्रान अरबी, अंग्रेजी और फारसी के ज्ञाता थे, दार्शनिक थे और चित्रकार थे. और अब बात उन व्यक्तियों की जिनकी आज जयंती है या फिर जन्मदिन है. आज जयंती है उर्दू के प्रसिद्ध शायर और साहित्यकार मोहम्मद अलवी की। उनका पहला कविता संग्रह था खाली मकान, जो पाठकों के लिए 1963 में सामने आया। 1967 में आखिरी दिन की तलाश, 1978 में तीसरी किताब और 1992 में चौथा आसमान, ये उनके प्रमुख संग्रह हैं। और उनकी कविता संकलन चौथा आसमान के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
टुडे इज द बर्थडे ऑफ सेलिब्रेटेड इंडियन शेफ संजीव कपूर। Born and raised in Ambala, his journey towards cooking began with the aroma of spices drifting through his family's kitchen. His fascination with flavors and textures ignited a passion for cooking, and he began his career in the hospitality industry in 1984 after completing the diploma in hotel management from the Institute of Hotel Management, Catering and Nutrition in New Delhi. He became a household name in India after he hosted the famous cooking show Khana Khazana, which went on to be aired for 18 years. He holds many awards to his name, including the prestigious Padma Shri awarded to him in the year 2017.
आज प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका किशोरी अमोनकर की भी जयंती है, जिन्होंने अपने शास्त्रीय संगीत के बल पर दशकों तक हिंदुस्तान के संगीत प्रेमियों को दिल में अपनी जगह बनाए रखी। उनकी खूबसूरत आवाज में पहले कुछ यूं सुनते हैं। किशोरी अमोनकर को हिंदुस्तानी परंपरा के अग्रणी गायकों में से एक माना जाता है। किशोरी अमोनकर जयपुर अतरौली घराने की प्रमुख गायिका थी और विशिष्ट संगीत शैली के समुदाय का वो प्रतिनिधित्व भी करती थी।
एब्सोल्युटली, अमोनकर्स करियर एज अ क्लासिकल वोकलिस्ट ग्रू इन द 1960s एंड 70s। प्रायर टू दिस शी ब्रीफली स्टॉप्ड परफॉर्मिंग बिकॉज ऑफ एन इलनेस दैट अफेक्टेड हर एबिलिटी टू सिंग, बट शी सेड दैट शी यूज्ड दिस हायटस इन हर करियर टू कंसिडर एंड डेवलप हर ओन स्टाइल ऑफ सिंगिंग दैट ट्रांसेंडेड क्लासिकल घरानाज ऑफ म्यूजिक।
किशोरी अमोनकर से एक बातचीत में उन्होंने कुछ यूं कहा।
मेरे लिए तो संगीत पैसा मिलाने की या लोगों के सामने आने जाने की बात ही नहीं। अब इसका इफेक्ट ऐसे होता है कि संगीत कोई भी गाता है तो पंछी भी आ जाते हैं, तो लोग तो आएंगे ही। सीधी बात, घराने की जो डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन काबू में लाने के लिए बहुत साल गुजारने पड़ते हैं। साधना बहुत गहरी होती है, काफी दिन लगते हैं, साल लगते हैं। तो हो सकता है कि लोग शायद, हालांकि किसी भी घराने में सुर और लय की बात ही तो चलती है। अब इस सुर को काबू में लाने के लिए या लय का अंदाजा आने के लिए जो भी साधना करनी होती है वो अलग अलग तरीके से की जाती है। मतलब कि हमारे घराने में सुर और शब्द और या सुर और शब्द और लय जिस ताल में हम बंदिश गाते हैं इसके हिसाब से चलता है। हमारे घराने में ज्यादा विलंबित लय नहीं होते, क्योंकि गाने वाले को एक हद होती है सांस लेने की। हमारे घराने में ये डिसिप्लिन है कि बंदिश में दो दो चार चार पांच पांच बार हम सांस लेते नहीं हैं।
ये आवाज थी किशोरी अमोनकर की। किशोरी अमोनकर कहती थी कि संगीत पांचवा वेद है, इसे आप मशीन से नहीं सीख सकते। 1964 में एक फिल्म आई थी गीत गाया पत्थरों ने, उसके लिए भी उन्होंने अपनी आवाज दी थी। बहुत ही खूबसूरत सा गीत है किशोरी अमोनकर के स्वर में, आइए सुनते हैं।
Amonkar's work in light music reformed her classical singing, and she modified her Jaipur Gharana performance style by applying features from other gharanas. She has been both praised and criticized for pushing the boundaries of the Jaipur tradition. She was a romanticist, and her approach prioritized emotional expression over tradition. So she often departed from the Jaipur Gharana's rhythmic, melodic and structural traditions.
पद्मभूषण, संगीत नाटक अकादमी और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से उनको पुरस्कृत किया जा चुका है। 3 अप्रैल 2017 को वो इस फानी दुनिया को अलविदा कह गईं। किशोरी अमोनकर। आज सवेरे के आज के इस अंक में बस इतना ही। अपनी टीम एडिटर दीप माला और प्रोडक्शन असिस्टेंट केपी सिंह के साथ मैं नवीन और रम्या आपको छोड़े जा रहे हैं। और रम्या, आज दूसरा नवरात्र है, तो क्यों ना आप इस प्रोग्राम को बस यहीं विराम दें इस खूबसूरत भजन के साथ।
जय जगदीश।